सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र और सभ्य समाज की पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से होती है। वस्तुतः भारत में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला, संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण। दूसरा, संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने के कारण। तीसरा, सरकार के कार्यों का व्याख्या संविधान के अनुसार करके विभिन्न अंगों में संतुलन। चौथा, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। पांचवा, विशिष्ट परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति को। छठा, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत। संगठन, मूल रूप में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, परंतु संविधान के अनुसार संसद को विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार, वेतन या सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है। अतः समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। 1960 में कुल 14 तथा 1977 में कुल 18 न्यायाधीश कर दी गई। अधिनियम 1985 के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 25 तथा एक मुख्य न्यायाधीश कर दी गई। अनुच्छेद 124 में नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से अवश्य ही परामर्श लेता है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत का न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में निर्णय के आधार पर अब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त परामर्शों के आधार पर की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहयोग से निर्णयों के आधार पर राष्ट्रपति को भेजेगी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124, यदि उच्चतम न्यायालय का श्रेष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसे ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, परंतु अब यह गुण मेरिट के आधार पर चयन का विषय नहीं है। वरिष्ठता को पहले स्थान दिया गया है और योग्यता को दूसरा। विधि आयोग ने अपनी 80वीं रिपोर्ट में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत को कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता, पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। तीसरा, कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। चौथा, राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। पदावधि, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु उल्लेखित नहीं है। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वेतन, 1/1/1996 से भारत के मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये और प्रत्येक अन्य न्यायाधीश को 30,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा उसे अन्य सुविधाएं एवं भत्ते दिए जाते हैं। अधिकार, पहला, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा समवर्ती क्षेत्राधिकार। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी, फौजदारी, विशिष्ट अपील। तीसरा, अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। चौथा, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार 137 अनुच्छेद में है। पांचवा, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार 143 अनुच्छेद में है। अभिलेख न्यायालय, जिसमें पहला, निर्णय सभी जगह मान्य होता है, यह 129 अनुच्छेद में है। सातवां, मूल अधिकारों के रक्षक। आठवां, संविधान का संरक्षक, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, अनुच्छेद न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 146 में है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या शक्तियां तथा कार्य, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिनका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। क, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, इस क्षेत्राधिकार का आशय उन विवादों से जिनकी सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। दूसरा, भारत सरकार संघ का कोई राज्य या राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संवैधानिक विषयों के संबंध में उत्पन्न विवाद। ख, प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्रदान किया गया है। अतः मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जो विवाद हैं वे चाहे तो पहले राज्य के उच्च न्यायालय में और चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, संवैधानिक। संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय के यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि उस विषय में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है। दूसरा, दीवानी। अनुच्छेद 133 को संशोधित कर धनराशि की सीमा हटाते हुए अब यह निश्चित कह किया गया है कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित सारपूर्ण प्रश्न निहित है। ग, फौजदारी। अनुच्छेद 134 में फौजदारी क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के लिए के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिनमें पहला, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो जिसमें नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो। दूसरा, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों में चल रहे किसी विवाद को अपनाए या यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया हो। तीसरा, उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है। घ, विशिष्ट अपील। अनुच्छेद 135 में कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते लेकिन जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अनुच्छेद 135, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सबसे शक्तिशाली है। अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। अनुच्छेद 136, सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथा, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार कर उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सके। ऐसा उस समय किया जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है या यदि उस विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आया हो। पांचवा, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य की कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होगा। अयोध्या विवाद के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह विशेष विषय था। अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की स्थिति प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय को के दो आशय हैं। पहला, इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह तथा साक्षी रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। दूसरा, इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमान के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। सातवां, मूल अधिकारों के रक्षक। अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मूल अधिकारों को रूप करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंद प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, पृच्छा और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। आठवां, संविधान का संरक्षक, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने संरक्षण की भी शक्ति प्रदान किया गया है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्वलोकन का अधिकार देता है। अतः यदि संघीय संसद अथवा राज्य विधानमंडल संविधान का अंतःक्रिया करते हैं या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। नौवां, न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार की नियुक्ति यूपीएससी के परामर्श के बाद की जाए। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को भी न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में निर्देश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अब तक के क्रियाकलाप को देखकर कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था मूल अधिकार और संविधान की रक्षा करने में संविधान न्यायालय में सदैव ही निष्पक्षता, निर्भक्ता और न्यायपरायणता का परिचय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। पहला, न्यायाधीशों की नियुक्ति। दूसरा, दीर्घ कार्य एवं पद की सुरक्षा। तीसरा, वेतन पर्याप्त एवं संसदीय नियंत्रण से बाहर। चौथा, अपनी कार्य प्रणाली के नियंत्रण हेतु नियम बनाने की शक्ति। पांचवा, कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। छठा, संसद न्यायाधीशों के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता। सातवां, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध।